अल्लाह ताला का एक फैसला तो ये है कि एक बड़ी खूबसूरत कम्युनिटी बने, लेकिन याद रखिए कि जहाँ दो बर्तन होते हैं वो किसी न किसी वक्त में झनक ही पड़ते हैं। अगली आयत में दो रूठे हुओं को मनाने का तरीका है। वइन ताइफतानि मिनल मोमिनीन इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, और अगर अहले ईमान के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो इनके दरमियान सुलह करवा दो। फिर फइन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, और अगर ज्यादती करे गिरोह दूसरे पर, फ़कातिलुल्लती तबगी, तो सब मिलकर लड़ो इससे जो ज्यादती करता है। बात वाजह हो रही है ना? दो लड़ रहे हैं, एक ज्यादती कर रहा है, तो तुम उस ज्यादती करने वाले से लड़ो, चाहे वो तुम्हारे ससुराल से क्यों ना हो, किसी गैर कौम से क्यों ना हो, लेकिन तुम उसके साथ लड़ाई करो जो कि ज्यादती कर रहा है। कब तक? हत्ता तफिया इला अमरिल्लाह, जहाँ तक कि वो लौट आए अल्लाह के हुक्म की तरफ, यानी ज्यादती करना छोड़ दे। फिर फाइन फात, फिर अगर वो लौट आए यानी मामला सुलझ जाए, सुलह हो जाए, फसले हो बैनहुमा, तो इसलाह करवा दिया करो, सुलह करवा दिया करो इन दोनों के दरमियान में। बिल अदली व अक्सतु, अदल और इंसाफ के साथ, और इंसाफ करो, क्योंकि इन अल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, अल्लाह ताला पसंद करते हैं इंसाफ करने वालों को। इस बात की ज़रूरत क्यों पेश आई? दो फिरकों या दो गिरोहों या दो इंसानों में सुलह कराओ, इसलिए कि इन्नमल मोमिनून इख्वतुन, बेशक ईमान वाले तो आपस में भाई हैं। फसलहू बैन अखवैकुम, पस सुलह करवा दो अपने दोनों भाइयों के दरमियान। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और डरते रहा करो अल्लाह ताला से ताकि तुम पर रहम किया जाए। इन आयात में ख़ास वाक़यात को बुनियाद बनाकर सहाबा कराम के बीच में होने वाली कुछ जंगों या कुछ गलत फहमियों को बुनियाद बनाकर मुफस्सरीन ने ये बात नोट की कि जब कभी दोनों ही मुसलमान हैं, दोनों ही अपने अपने गुमान के मुताबिक ही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर एक दूसरे के साथ दुरुस्त मामला नहीं करता, तो तुम दोनों की सुलह करा दो, क्योंकि झगड़े फसाद खराबियां जो हैं वो मुआशरों का सुकून जो है वो ख़त्म कर देते हैं। बास कहते हैं कि यहाँ हजरत अली और तलहा के बीच वाली जंग की बात है, बास कहते हैं कि यजीद और हजरत हुसैन के बीच की बात है। कोई कुछ भी कह दे, हम कुछ नहीं कहेंगे। हमें एक जनरल रूल इसमें से मिल गया, और मुझे तो डर लगता है ऐसी बातों को कोट करते हुए भी, क्योंकि जब हम बहुत सारी बातें नहीं सुनते तो फिर थोड़ी सी सुन के उसके ऊपर चल पड़ते हैं। हाँ, सहाबा कराम में गलत फहमियों की बुनियाद पर बाज़ दफ़ा जंगें हुई, बाज़ वजूहत सियासी थी, बाज़ जंगी थी, लेकिन कभी भी सहाबा कराम में दीन की बुनियाद पर झगड़े नहीं हुए। ये याद रखिएगा, फ़र्क समझ लें, फिर आप इंशाल्लाह इसको महसूस करेंगे कि सहाबा कराम कभी दीन के नाम पे नहीं लड़े, जैसे आज हम मसलक के नाम पे लड़ते हैं। गिरोबंदी के नाम पे कभी नहीं लड़े, एक एक इमाम का मुकल्लद है, दूसरा दूसरे इमाम का मुकल्लद है, कभी नहीं लड़े। राय दूसरे से फ़र्क होती थी, दूसरे सहाबी से नहीं लड़ते थे। सिर्फ चंद बातें जो हमारे सामने तारीख की आती हैं ना, उसमें सियासी बातें थी, उसमें बाज़ दफ़ा गैरों की लगाई हुई आग थी, गलत फहमियाँ थी, लेकिन सहाबा कराम का हाल क्या होता था कि वो जब कभी दूसरे के खिलाफ लड़ते भी थे तो दूसरे को ना जहन्नमी कहते थे ना काफिर कहते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक मौके पे किसी दूसरे सहाबी से लड़ाई थी, किसी गैर मुस्लिम ने हज़रत अली को ख़त लिखा, हज़रत मुआविया और हज़रत अली की जो कहानी थी, और उन्हें कहा कि तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। दुश्मन का तो फेवरेट काम है कि वो दो मुसलमानों के बीच में हथियार बांटे, फ्री बांट देंगे, खुश होंगे कि हमने इनको लड़ाया। जब उसने ये बात कही तो हज़रत अली ने फरमाया कि देखो, मेरी इनसे जो जंग है ना, ये हमारा सियासी मसला है, और अगर तुमने मुआविया के ख़िलाफ़ कोई फ़ौज भेजी तो याद रखो कि उसका रास्ता रोकने वाला मैं सबसे पहला आऊँगा। ये है सहाबा कराम का आपस में मुकाम। हाँ, फिर भी दो इंसान हैं, किसी मौके पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जंगो जदल की सरजमीन थी, फितने ही फितने थे, हर वक्त लड़ाइयाँ होती थी उस दौर में, कबीले कबीलों से, हमसाए हमसायों से, ना जान में फूसता ना माल में फूसता। अल्लाह ताला ऐसी आयतों को सामने लाकर हम सबको सबक दे रहे हैं कि लड़ाने वाले ना बना करो, बल्कि सुलह करवाने वाले बना करो। इस तरीके से दूसरों की जलती पे तेल ना डालो, बल्कि उनको हिदायत दो, उनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात ना करो। اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا کہ دو لڑنے والوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے کوئی جھوٹ بھی بولتے تھے نا تو وہ گناہ نہیں. شوہر بیوی کو بھی لڑنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑا بلکہ کہا حکمم من اہلیہا و حکمم من اہلیہ. ٹھیک ہے, عموماً دیکھیے کہ وراثت کے نام پہ بھائی بہنوں میں جھگڑے ہوتے ہیں, ایک گھر میں رہنے والے بعض دفعہ لڑ لڑ کے مرتے ہیں, اتنے جھگڑے بڑھتے ہیں, کس کا ساتھ دیا جائے؟ حق کا ساتھ دیا جائے, نہ بھائی کا ساتھ دیں نہ بہن کا دیں نہ شوہر کا نہ بیوی کا, حق کا ساتھ دیں گے. ایسے موقع پہ جذبات سے نہیں سمجھداری سے کام کرنا چاہیے, کیونکہ بعض دفعہ مرنے والا تو بیچارہ اپنی ساری زندگی کی کمائی چھوڑ کے گیا ہوتا ہے, اور بعد والے لڑ لڑ کے اس کا بھی نام بدنام کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھی دوسری طرف لے جاتے ہیں. اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ دو لڑنے والوں کو تنہا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, ورنہ نتیجہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے. کبھی بھی کہیں بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, پہلے دن سے کوشش کریں. ایک چھوٹا سا آرٹیکل آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں, اس کا نام ہے اول دن, پہلا ہی دن. زکام شروع ہونے سے پہلے اس کی کچھ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں, مثلا چھینک آنا زکام کی ابتدائی علامت ظاہر ہوتے ہی. اگر فوری طور پر دوا لے لی جائے تو پہلی ہی خوراک میں زکام کنٹرول میں آ جائے گا, لیکن اگر دیر کی جائے تو لمبی مدت تک زکام آپ کو پریشان کرتا رہے گا. یہی دوسری بیماریوں کا بھی معاملہ ہے, زندگی کے مسائل اور معاملات کی نوعیت بھی یہی ہے. اس بات کو فارسی زبان کی ایک مثل میں اس طرح کہا گیا, غربہ کشتن روزے اول. ترجمہ کیا ہے؟ بلی کو پہلے ہی دن ہلاک کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے تمہارا کوئی جھگڑا ہو یا اس سے دشمنی ہو جائے تو ابتدا ہی میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو, حتیٰ کہ دوسرے فریق کی شرطوں پر اگر معاملہ ختم ہوتا ہو تب بھی اس میں دیر نہ کرو. کب کیا اللہ کے نبی نے ایسا؟ صلح حدیبیہ پہ. مان لو ان کی باتیں, جھگڑا ختم کرو, شروع میں کر لیجئے, چاہے دوسرے کی شرائط کو ہی ماننا پڑے, کوشش کر کے اس طریقے سے کیا جائے, تب بھی اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اس طرح کے معاملات میں دیر کرنے کا نتیجہ صرف یہ ہوتا ہے کہ معاملے کی پیچیدگی بڑھتی جاتی ہے. سچ ہے نا, آج ایک گلا تھا نا, کل دو ہوں گے, پھر پرسوں چار ہوں گے, پھر آٹھ ہوں گے, پھر 16, پھر ملٹی پلائی ہوتے جائیں گے. نزائی مسئلہ ابتدائی مرحلے میں تھوڑی قیمت میں حل ہو جاتا ہے, جبکہ بات کو بھاری قیمت دے کر اسے حل کرنا پڑتا ہے. اس اصول پر عمل نہ کرنے کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ جھگڑا پیش آنے کے بعد صاحب معاملہ معتدل یعنی بیلنسڈ مینٹل کنڈیشن میں نہیں رہتا, اس لیے وہ بے لاگ فیصلہ کرنے میں عاجز ثابت ہوتا ہے. کیونکہ جب بات بنتی ہے نا تو وہ دماغ ہی نہیں کام کرتا. جیسے لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو بیوی خود ہی کہتی نہیں, مجھے اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اسی لیے کہا کہ دو جھگڑ رہے ہیں تو تم جا کے فصل ہو بہی نہ ہوما. جو دو جھگڑ رہے ہوتے ہیں ان کا ذہن آپس میں اس قابل ہی نہیں رہتا کہ کام کریں, اس لیے وہ بے لاگ فیصلہ کرنے میں عاجز ثابت ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ معاملہ پیش آنے کے بعد لوگوں سے مشورہ کیا جائے, اور جو مشورہ ملے اس پر کھلے ذہن کے ساتھ غور کیا جائے. مشورے کے ذریعے وہ درست رائے معلوم ہو جاتی ہے جس کو صاحب معاملہ اپنے متاثر ذہن کی بنا پر دریافت نہیں کر سکا تھا. جھگڑے کا جاری رکھنا کسی بھی فریق کے حق میں مفید نہیں. اگر دوسرا فریق ضد کا طریقہ اختیار کرے تب بھی ایک فریق کو یک طرفہ طور پر اسے ختم کر دینا چاہیے. جو فریق نزاع یعنی جھگڑے کے خاتمے کی پہل کرے گا آخر کار وہ کامیاب ہوگا. اور جو دین آپ یہاں سیکھ رہے ہیں, میں تو آپ سب کو نصیحت کروں گی کہ ہم آپ کو یہی سکھاتے ہیں کہ جھگڑنے والوں سے جھگڑنا چھوڑ دیں. جو کرنا ہے اپنے تھوڑی سی حقوق کی کمی پہ بھی کر لیں, لیکن کوئی ایسا معاملہ نہ کیجئے کہ جس کی بنیاد پہ جھگڑا بڑھے. نپ دا ایول ان دا بڈ, اسی کو کہتے ہیں انگلش میں, کہ برائی کو پہلے ہی دن روک دیں. تو اگر ہم خاندانوں میں جھگڑے سلجھاتے رہیں گے دین کے کام کب کریں گے؟ کتنا دین کا نقصان ہوتا ہے گھر کے جھگڑوں میں, خاندانوں کے. بعض لوگوں کی تو عدالتیں اپنے گھروں کی نہیں ختم ہوتی. کوئی وراثت کا مسئلہ ختم ہوا تو کسی کی طلاق کا ایشو شروع ہو گیا. اس کو سلجھا رہے تھے تو پتہ چلا کسی نے مقدمہ کر دیا. اس کو سلجھا رہے ہیں تو پتہ چلا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب اس کا کیس چل رہا ہے. کچھ لوگوں کی ساری زندگی اختلافات میں رہتی ہے, ساری زندگی جھگڑے چکاتے میں رہتی ہے, درست نہیں ہے. آپ کو ہوتا ہے کہ امت سے خیر چلی جاتی ہے جب مسلمان لڑتے ہیں ایک دوسرے سے؟ امام مالک کا عمل بتاتی ہوں, हदीस पढ़ाने से पहले अपने शागिर्दों से पूछते हैं। मैंने नहीं कभी वैसे आपसे पूछा यहाँ, लेकिन आप देखिए कि जो हमारे असलाफ थे वो कितने स्ट्रिक्ट होते थे। कहते थे कि तुम में से कोई काते रहम तो नहीं इस महफिल में बैठा हुआ, यानी मसलन ये ऐसे ही है सिर्फ समझाने के लिए कि मैं आपसे कहूँ कि ये बताएं कि आप में से कोई यहाँ आने से पहले कतअ ताल्लुक ही तो नहीं कर चुका, कोई रिश्तेदारियों के झगड़ों में, कोई शोहर बीवी के, कोई माँ बाप के, ऐसा तो नहीं है। और अगर कोई होता तो कहते कि अगर कोई ऐसा है तो वो यहाँ से चला जाए। क्यों? इसलिए कि उसकी वजह से इस महफिल पर रहमत को नहीं उतरनी और सारे भी महरूम रह जाएंगे। गर्मी सर्दी इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आपस का बोगस और मैल दिल को खोखला कर देता है। आपने फरमाया कि आपस का झगड़ा और फसाद नेकियों को मोड़ देता है, जैसे शेवर होते हैं ना, शेव करते हैं, ये नेकियों को मोड़ देता है। फिर आपने दोबारा कहा, मैं नहीं कहता कि वो बालों को मोड़ता है, मैं ये कहता हूँ कि वो नेकियों को मोड़ता है। बात करें आप, नेकियों किसकी मूडेंगे जिसकी फसलें लगी होंगी 25 पारों की, 26 पारों की। ये भी एक बहुत बड़ी वजह अपने अंदर चेक करें। अगर पढ़ने के साथ भी अगर अमल नहीं आ रहा ना, या दिल नहीं बदल रहा, या अभी ईमान की कैफियत नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई झगड़े खड़े हुए हैं। इतना वक्त ही कोई नहीं है झगड़ने का। जहन्नम में जाके जहन्नम में खूब झगड़ेंगे। मोमिन के पास दुनिया में झगड़ा नहीं होता, वक्त ही नहीं होता। मुसनद अहमद की एक रिवायत है कि मुसलमान एक मोमिन दूसरे मुसलमान का भाई होता है, ना वो उस पर जुल्म करता है, ना उसको हकीर समझता है, और ना उसका साथ छोड़ता है। ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे धमकियां दे के जी अब हम नहीं साथ चल सकते। जब भी मुसलमान किसी जगह दीन के नाम पे भी मिलते हैं तो खूब सोच के मिले कि हमने किसी नाम के साथ नहीं जोड़ा अपने आप को, अल्लाह की बात से जोड़ा। अगर ऐसे वक्त में कोई छुटता है तो वो असल में दीन को छोड़ देता है। और भी बहुत सारी इस पे खूबसूरत रिवायात हैं, लेकिन बस समझ लीजिए कि आज इस पैगाम को बहुत आम करने की ज़रूरत है कि खुदा के लिए झगड़े छोड़ो। इससे कुछ नहीं मिलेगा, उस घर से बरकत चली जाती है जहाँ झगड़ा हो। तो बताइए क्या उस मस्जिद में बरकत रहेगी जहाँ हर वक्त इख्तलाफी बातें, उन मेंबरों से खैर फूटेगी जहाँ हर वक्त झगड़ों की बातें, उन इदारों उन इंस्टीट्यूट्स में खैर होगी जहाँ सिर्फ दूसरों के साथ लड़ाई बढ़ाई, हमारा ये मसलक हमारा वो। अपने काम से काम रखिए और उसके बाद बाकी को छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा पूरा हुआ इस सूरत का, जिसका ताल्लुक इज्तमाई ज़िंदगी से था। इस्लाम क्या सिखाता है? इज्तमाई माहौल दुरुस्त करो ताकि फ़र्द की सतह पे दीन कायम हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की यह रिवायत है, अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद फरमाता रहता है जब तक कि वो बंदा अपने भाई की मदद और एयानत में लगा रहता है। कितना आसान है अल्लाह की मदद को लेना। नबी सल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए इसकी अदम मौजूदगी में इसके लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ता इस पर आमीन कहता है और कहता है कि यही दुआ तेरे हक में भी मकबूल हो। एक और रिवायत, मुसलमानों की मिसाल एक दूसरे से मोहब्बत करने में, एक दूसरे पर रहम करने में, एक दूसरे से सिला रहमी करने में ऐसी है जैसा कि एक जिस्म हो, जब इसका कोई उस बीमार हो जाए तो सारा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाता और बेदार रहता है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार की मानिंद है, हर ईंट दूसरी ईंट को सहारा देती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा जहन झगड़ों वाला नहीं बल्कि सुलह वाला बन जाए और हम अदल और इंसाफ कर सकें। तिलावत सुनते हैं यहाँ तक और साथ साथ अपना मुहासबा भी करेंगे कि क्या वाकई मेरे ताल्लुकात दूसरे ईमान वालों से अच्छे हैं, क्या ईमान की बुनियाद पर फैसले करती हूँ, मेरी सारी हमदर्दियाँ गम गुसारियाँ ईमान की बुनियाद पर हैं, और क्या वाकई मैं अल्लाह की रहमत की मुस्तहिक होती हूँ दिल में इतने बुग़्ज़ और कीने पाल कर। और सबसे बड़ी सजा तो यही मिलती है ना कि अल्लाह ताला इंसान को फिर उस दिल से दूर करता है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.